ดูโซนสนามเด็กเสียสติสระมีดูสนามเด็กดีตาทาวเวอร์ขอสุขตาทาวเวอร์ตาทาวเวอร์รู้แต่ชันตีทาวเวอร์ให้มูลวัฒน์ยามอาตมาเรียกที่उनको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस सत्यतु में है टावर ऑफ सुख टावर ऑफ पीस प्रॉस्पेरिटी साइलेंस का टावर है आत्माओं का घर मुक्ति दान ऐसे और कोई मुक्ति कहेंगे नहीं कि हम आत्माओं का घर मुक्ति दान में है ये सभी बातें बात ही समझाते हैं टीचर हो तो ऐसा हो वो है टावर ऑफ नॉलेज तुम टावर में ले जाते हो शांति धाम सुख धाम है टावर और ये दुनिया फिर है टावर ऑफ दुख धाम तो हर बात में समझना होता है पवित्रता सुख शांति का वर्षा तुम इस समय पाते हो बलिहारी एक पुरुषोत्तम संगम युग की है जो तुम वर्षा पाते हो इन कुल कल्याणकारी कहा जाता है कलयुग के बाद होता है सतयुग वो सुख का टावर और वो शांति का टावर इस दुनिया में तो अथाह दुख है और सभी दुख आकर के इकट्ठे हुए कहते हैं दुख के पहाड़ गिरते हैं जब आ चुकी गाड़ी होती है तो ऐसे दुख के पहाड़ गिरते बाप ने समझाया है टाइम बाकी कितना है 8-9 वर्ष की टाइम जाती है किस बात में कौन से कल में बोला 8-9 वर्ष टाइम जाती है 59 में 8-9 वर्ष बोला तो कब होता है पूरा 77 वो भी टाइम जाती बताइए अब उस टाइम पर कौन से दुख के पहाड़ गिरते हैं ब्रह्मा बाबा के ऊपर दुख के पहाड़ गिरे हैं ब्राह्मण परिवार के ऊपर दुख के पहाड़ गिरे बेहद के विनाश की बात की शुरुआत कहां से होती है यज्ञ में भी कहां से शुरुआत होती है जो बीज है सारी मनुष्य शक्ति का बीज है उस बीज के लिए ही पहले दुनिया खलास होती है आप मुए मर गई दुनिया तो बताया 8-9 वर्ष की टाइम जाती है बच्चों को याद की यात्रा में रहने में टाइम जाती ही लगता है बहुत है जो पूरा समझते भी नहीं है सोचते हैं बिंदी समझे क्या समझे अरे जैसे आत्मा बिंदी है वैसे ही परमात्मा भी बिंदी है आत्मा को तो जानते हो ना वो लकी सितारा है बिल्कुल सूक्ष्म है इन आंखों से देख नहीं सकते तो बाप बैठ समझाते हैं टावर ऑफ शांति टावर ऑफ सुख टावर ऑफ पवित्रता ये होती है नई दुनिया बाप याद करके पुराने स्वभाव को करेक्टर को सुधार करके नई दुनिया का मालिक बनाते हैं मनुष्य इन बातों को नहीं जानते बल गाते हैं वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं सीढ़ी और ही नीचे उतरते चले आते हैं बल अपन को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं परंतु उनको नीचे तो उतरना ही आत्मा पहले सभी की तत्व प्रदान होती है फिर आस्ते आस्ते बैटरी खलास होती जाती है इस समय तो सभी की बैटरी खलास हो गई अभी फिर से बैटरी चार्ज होती है बाप कहते हैं मन मना भव बाप है सर्वशक्तिमान उनको याद करने से तुम्हारी तुम्हारे जो विकर्म है वो सब कट जाएंगे और फिर बैटरी भी चार्ज हो जाएगी तुम अभी फील करते हो कि हमारी बैटरी भर रही है कोई की भी नहीं भरती है सिवाय तुम्हारी सुधारने के बदले और ही बिगड़ पड़ते हैं बातें तैयारी करते हैं, बाबा हम विकार में कब नहीं जावेंगे, आपसे की जन्म का वर्षा जरूर लेंगे, पड़ते हैं। स्त्री का मुंह देखने से ही अकल चट हो जाता है। बाप समझाते हैं ये काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से ही काम की आग लग जाती है, तो क्या करना चाहिए है? वो एक दूसरे को देखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना आंखों से है? ये आंखें ही सबसे जाती धोखा देती है। बाबा पादरियों का मिसाल देते हैं, पादरी जाते हैं तय करने के लिए तो इधर उधर देखते भी नहीं है, साइलेंस में जाते हैं। ये मिसाल क्यों दिया कि जितना हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे उतना कंट्रोल हो जाएंगे, जबकि मालूम है कि देखने से ही काम की आग लगती है, तो कंट्रोल करना चाहिए ना। तुम काम किताब पर बैठ कितने सांवरे बन गए, अभी तो बोरा बनाते हैं, मनुष्य फिर ऐसे बाप के लिए कह देते हैं वो सर जाती है, जो आकर हमको बोरा बनाते हैं, कितनी ग्लानी करते हैं यदा यदा है धर्म से, इसका अर्थ भी नहीं समझते कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूँ, किस समय की बात है? धर्म की ग्लानी कब होती है? जरूर संगम युग पर ही धर्म की ग्लानी होती है कि जब बाप आते हैं तो भी, बुद्धि में ये बात बैठती नहीं कि बाप सर्वव्यापी है या एक व्यापी है, ऐसे ही कंठ कर लेते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। बहुत सीखते हैं, वास्तव में ये कोई सच्चू की भाषा नहीं है, ये तो शंकराचार्य सन्यासीवादी की भाषा है। अब तुमको बाप बैठ समझाते हैं, तो पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है, अब तुमको पता पड़ा है ये वैरायटी मनुष्यों का झाड़ है, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म आते, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ, दो का भी एक जैसा पाठ नहीं हो सकता। कितनी ढेर आत्माएं हैं, कैसी वो पति आती हैं, अपना अपना पाठ बजाती हैं, गाना में सभी बांधे हुए हैं, पाठ बजाते बजाते नीचे उतरते उतरते कल्प आकर के पूरा हुआ, हम आगे फिर ऊपर जाते, नीचे उतरने से सारा कल्प लग जाता है। ये समय भी अब तुम बच्चों को मिला है, पत्तियात में नंबर बार आती हैं, ऐड होती जाती हैं, इस खेल में तुम सभी पार्टदारी हो। मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर और एक्टर तो होते हैं ना, इसमें मुख्य तो है शिव बाबा। क्या है मुख्य? शिव बाबा मुख्य क्या है? ड्रामा क्रिएट करने वाला है, क्रिएटर कहें डायरेक्टर, डायरेक्शन देने वाला, पर्दे के पीछे से डायरेक्शन दिया जाता है। डायरेक्टर देखने में नहीं आता, देखने में कौन आता है? एक्टर्स देखने में आते हैं। तो मुख्य है शिव बाबा, फिर एक्टर्स है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये पार्ट कहाँ बजाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर जो एक्टर है? सूक्ष्म बतन में, सूक्ष्म बतन में थोड़ी एक्ट होती है, पार्ट तो साकार सृष्टि पर ही बजाया जाता है। भक्ति मार्ग में भी भले सेवता चित्र बनाया है परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं। विष्णु चतुर्भुज कौन है, कब हुआ, कुछ भी पता नहीं, लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाप आकर के सारी नॉलेज देते हैं, सचिव में ये ज्ञान नहीं होगा, जैसे यहाँ कारोबार चलती है वैसे वहां भी फिर पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी सी बिंदी है, तुम्हारी आत्मा है वैसे इनकी भी आत्मा, तुम्हारी आत्मा बाप से ज्ञान ले रही है, तो बाबा फिर कोई बड़ा थोड़ा ही होगा, वो भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है, तो ये ज्ञान बाप कल्प के बाद ही देंगे, उनकी आत्मा में ये सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। अब कुदरत का अर्थ क्या है, कह देते हैं कुदरत। इस अनाज ड्रामा के पार्ट से एक भी नहीं छूट सकता, सभी को पार्ट बजाना है, तो ये है सब वंडरफुल बात। तुम जो अच्छी रीति समझ करके ध्यान करते हो तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है, उस जन को खुशी होती है, इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए, आप समान बनाना है, टीचर से टीचर बनाना है, ऐसे नहीं तो गुरु भी बनना है, तभी को बाप भी बनना है, ऐसे भी नहीं। क्या बनना है? टीचर से टीचर बनना है। ऐसे नहीं कि बाप भी बनना है और गुरु भी बनना है, तुम सिर्फ टीचर बनते हो, राजू सिखलाते हो, तुम फिर चले जाते हो उस पार, ये भी और कोई जानते नहीं है, न सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति जाता तो एक ही बात है, सर्व का लिबरेटर गाइड भी वही है और गाइड भी अभी बनता है। अभी माना कब? अभी संगम युग पर ही गाइड बनता है प्रैक्टिकल में ले जाने के लिए। कहाँ ले जाता है? कहाँ का गाइड है? रूपधाम और शांति धाम का गाइड है। जब तुम वहां से आते हो तो गाइड नहीं बनता है, घर से आते हो फिर घर को ही भूल जाते हो, इसलिए बाप गाइड बन करके ले जाते हैं। अभी तुम सभी गाइड बन करके रास्ता बताते हो तो असर ही रिफर हो। तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है, यहाँ तो चली जा रही हो। जब अकेले बटर तो हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ हो तो तुम सेना हो, तुम माया पर जीत पाते हो तो तुम सेना हो। इन्होंने शास्त्रों में लड़ाई आदि की बातें लिख दी, जैसे पाप समझाते हैं तुम सभी द्रौपदी दुर्योधन दुशासन हो, क्योंकि नगन तो सभी होते हैं ना, तो ये बेहद की बात है, कोई एक दुर्योधन दुशासन की बात नहीं है। शास्त्रों में लिख दिया एक द्रौपदी के लिए, उनको पांच पति थे, अब ये तो नहीं हो सकता। हिंदुस्तान तो एक ही पति होता है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी नारी अनेक पति करती है क्या? आजकल बहुत गंदगी लगी पड़ी, ये ऐसी चीज हुई है। अब बाप तुमको गुरगुर बनाते हैं, ये लोग कांच में शादी करते हैं, उनमें भी हर तेल आदि कुछ नहीं निकलता है, माना हर तेल माना जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं पीस कॉन्फ्रेंस आदि, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। बहुत सुनाते वो तो संस्कृत जाने वाले जो होंगे वो ही समझ सकेंगे, और संस्कृत के लिए कितना खर्चा करते रहते हैं, कार्य आदि बनवाते रहते हैं, उसको कहा जाता है अंधसर, अंधाधुंध सरकार है कुछ भी नहीं, जैसे कि खाली हुए पड़े, सोना चांदी हीरे जवाहरात सभी खलास हो गए। तुम्हारे लिए तो फिर सभी खानियां निकलेंगी, तो तुम बच्चों को चलते चलते कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप और बच्चे को याद करना है, बात समझाते हैं बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते, मैं समझाता हूँ, 84 जन्मों का हिसाब भी बताते हैं, जो पहले पहले आते हैं उनको 84 जन्म मिलते हैं, बाकी 36 के जो बाद के जन्म में आवेंगे उनको 84 जन्म नहीं मिलते। तो तुम बच्चों को अथा सुख मिलते हैं, टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो कितना नशा होना चाहिए, बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना आपसे आज भी आती जाएंगी, उसके नजदीक आते जाओगे है हाँ, बाप के पास माना बाप के पुरुषार्थ के नजदीक अथवा नई दुनिया के नजदीक जितना आते जाएंगे उतनी आपसे आती आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है, झाड़ है अभी कच्चा, तो कच्चे झाड़ को तूफान लगने से झट क्षण पड़ता है, ये भी होना ही है। तुम्हारी अहम जगह का चित्र सामने है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते हो, भक्ति मार्ग में तो सन्मुख ढेर चित्र रख देते, तो वो विचारी मार्ग हो गया, ज्यादा यहाँ ढेर के ढेर चित्र रख दिए जाए तो हो गया विचारी मार्ग है, ज्ञान मार्ग में है ही एक। तो भी तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, चित्र रखने की दरकार नहीं है, किसकी किसकी नॉलेज, जिसे एक की नॉलेज है उसका चित्र रखने की तुमको दरकार नहीं है, बिंदी का क्या चित्र निकलेगा, आत्मा तो सितारा है, उनको इन आंखों से तो देख नहीं सकते। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, हम वैकुंठ देखें, परंतु देखने से तुम वैकुंठ के मालिक थोड़े बन जाएंगे। वंशी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु अभी स्वर्ग है कहाँ, स्वर्ग में कोई जाते थोड़े ही हैं, जो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा, जो आत्मा स्वर्ग में गई है वो ही कहते हैं, आत्मा को याद रहती है। अभी तुम बच्चों को ऊंची ऊंची बात पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंची ऊंची पद पाए रहे हो, नंबर वार पुरुषार्थ संसार नरते नारायण को जरूर बनेंगे, तो ये जो पीस आदि मांगते हैं उन्हों को तुम्हारा काम है समझाना,
जैसे सुशील कुमार मुनि है, अच्छा आदमी है, समझते हैं ये एक्यूरेट कहते हैं, उनको तो तुम समझा सकते हो, इनको है जैनियों का जो सुशील कुमार मुनि है उसको तुम समझा सकते हो, वो भी समय आवेगा, ये सभी आवेंगे। वेद का सुशील मुनि कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जैनी है कि नहीं है? है जैनी है, कौन है जैनी? वो जैनी तो दो तरह के होते हैं, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। यहाँ कौन से जैनी है? यहाँ सब श्वेतांबर है, दिगंबर कोई नहीं है। अरे दिगंबर माना क्या? दिग माना दिशाएं, अंबर माना कपड़े, दिशाएं ही जिनके कपड़े हैं, बाकी और कोई कपड़ा नहीं, माना शरीर रूपी वस्त्र का जिनको ध्यान रहता ही नहीं, जो सिर्फ अपने को ज्योति बिंदु नंगी आत्मा समझते हैं, वो हुए दिगंबर। और उनकी काली मूर्तियों का मंदिर है दिलवाड़ा में, और है श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रधारी, वो कौन है? है ब्रह्मा। ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं वो है श्वेत वस्त्रधारी। तो श्वेत वस्त्रधारी और दिगंबर, ये दो गुट्स हो गए, एक रुद्रमाला और एक विजयमाला। तो सुशील कुमार मुनि कौन, किस तरफ का है? सुशील, शील कैसा? सुंदर शील है जिसका, वो कौन है? वो किस तरफ का है? ब्रह्मा की तरफ का है, दिगंबर की तरफ का है। अच्छा, इसलिए उसकी काली मूर्ति बनाई गई, उनकी यादगार काली मूर्तियों का मंदिर है, काले कलूटे बनाए दिए। जैसे सुशील कुमार मुनि है, अच्छा आदमी है, समझते हैं ये एक्यूरेट कहते हैं, उनको भी तुम समझा सकते हो। क्या कहा? उनको तुम समझा सकते हो।
बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई, तुम्हारे समझाने से ही ज्ञान की गंगा निकलेगी। ऐसी ऐसी बातें सुनकर फिर कह देते हैं कि यहाँ से गंगा निकली, ये हुआ और गौमुखी भी बना दिया है, कहाँ पहाड़ पर उनकी स्टेज में निशानी यादगार बनाई हुई है, कही की गौमुखी की गौ माना, जरूर कोई कन्या माता हुई है जिसके मुख से शुद्ध ज्ञान जल निकलता है। अभी तुम समझते हो ये तुम्हारा यादगार बना हुआ है, कौन सा? गौमुख का दिलवाला मंदिर, ये भी तुम्हारा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और स्वर्ग ऊपर में खड़ा है, ऊपर में खड़ा। जब ऊंची स्टेज में पहुंचते हैं तो सुखमय स्टेज में अनुभव करते हैं, और जब तक नीचे स्टेज में है तब तक तपस्या तपने की दरकार। मनुष्य समझते हैं शायद स्वर्ग ऊपर में होता होगा, इतनी कारीगरी बनाई, इतना खर्चा करके बनाया है, ये सभी मंदिर आदि गिरेंगे ऐसे जो पता भी नहीं पड़ेगा। बम्प बनाने वाले खुद भी कहते हैं कि हमने अपने विनाश के लिए बनाए, कहते हैं ऐसे ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा ना, लिखा हुआ भी है महाभारत, महाभारत लड़ाई में ऐसे ऐसे कर खत्म हुए थे। सत्युग में तो होता ही है एक धर्म, बाकी सभी धर्म कला हो जाएंगे। ये भी समझाते हैं नौदा भक्ति करते करते फिर भी नीचे उतरते आए, भक्ति के साथ साथ सुनाते तुमको नीचे ही गिराते आए, धन भी लेते हैं और तुमको मंदिर तक पहुंचाए भी नहीं सकते, ड्रामा प्लान है। बात में आखिरी बात होती नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है, वही हो जाता है, उनके आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। जब कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य पिछाड़ी में कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। अब तुम बोलो ऐसे कहेंगे, तुम कहेंगे भाभी ड्रामा नहीं, तुम ईश्वर की भाभी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। ईश्वर भी क्या कहते हैं, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये सब कुछ भी कैसे करता है, ये बात ही समझा सकते हैं। नारेश्वर बाप है, मनुष्य समझते हैं, वो सभी के दिलों को जानते होंगे। परंतु हम जो पाप कर्म करते हैं उसका दंड तो जरूर हमको ही मिलेगा ना। इसमें किसी के दिल के अंदर को जानने की क्या दरकार, बाप पूरी कैसे दंड देगा। ये तो ऑटोमेटिक ड्रामा बना हुआ है जो करता रहता है। यानी कि आज मध्य अंत का रात बाप ही समझाते हैं, तुम दूसरों को समझाते हो, तुम बच्चों को निमंत्रण दे करके फिर बदल जाते। और ब्रह्मा कुमार कुमारियां कुछ करेंगी थोड़े ही। अरे एक बार ब्रह्मा कुमारियों का जो सुना तो सुनो ना, ब्रह्मा कुमारियां कोई मारेंगी थोड़े ही तुमको। समस्या ये अपना राज्य स्थापन कर रही, इनका राज्य स्थापन होगा तो हमारा तो तगति पलटा हो जाएगा। कौन समझते हैं और साधु सन्यासी कहते भी हैं ये ब्रह्मा कुमारियां विश्व का विनाश करने वाली है। कौन से विश्व का पहले विनाश होगा है? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में होता है सूक्ष्म विनाश। तो वहां भी ये जरूर कहने वाले ऐसे साधु सन्यासी होंगे कि यह ब्रह्मा कुमारियां विश्व का, ब्राह्मणों के विश्व का विनाश करने वाली है। विनाश तो होना ही है। तुम जैसे बाबा के पास आए हो तुमको वंडर लगता है ये क्या क्या करते रहते। भक्ति मार्ग में जैसे गुड़ियों का खेल होता है ना, क्या होता है गुड़ियों को खेल, पहले गुड़ियों को सजाते हैं है? बड़े अच्छे तरीके से उनका पोषण करते हैं है? अपने बाल बच्चों को बीजू दही नहीं देंगे और गुड़ियों को पहले जाके अर्पण करते हैं। धन धन धाम छोड़ परिवार सब लगाए देते हैं गुड़ियों की सेवा। तो पहले तीसरी सेवा करते हैं और फिर बाद में जाकर के सागर में डूबोगे है। कहां की बात, अरे यहाँ सब की बात है। ज्ञान सागर बाप जब प्रत्यक्ष होता है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ देवी देवता कोई भी है नहीं, हम तो ऐसे ही हमें श्रद्धा पूर्वक इनको देवी मान के चले आए। तो ये गुड़ियों का खेल है, इतने मंदिर आदि बनाए खर्चा करके फिर जाकर के समुद्र में डूबोगे। तो ये सभी नाली बाप बैठ बच्चों को देते हैं, कौन सी नाली। इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है, ब्राह्मणों के संबंध में बात कहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पिछाड़ी में कुछ भी याद नहीं, अपन को आत्मा समझ हम चले जाए। उसको कहा जाता है कर्म की कवच। ये तुम्हारा है अद्वैत धर्म जो तुम फिर से स्थापन कर रहे हो। तुम जो भी कुछ करते हो वो नथिंग हो, पर पहले जो पार्ट बजाया है वो पहले फिट कर रहे हो। अभी भी सभी को यही बताना है ऊंचे ऊंचे बात को याद करो तो तुम यह बन जाओगे। ये तुम्हारा बैज कितना अच्छा है, तुम सेना हो, ये बैज सदैव लटका रहे। कोई मांगे तो उनको ये बैज दे दो, तुमसे बहुत मांगेंगे। ये तो लाखों के अंदाज में चाहिए। कौन सा बैज, त्रिमूर्ति वाला बैज। अब लाखों के अंदाज में कौन सा बैज सब लिया है, ज्योतिबिंदु। तुमसे बहुत मांगेंगे, लाखों के अंदाज में चाहिए। बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह पढ़ाते हैं, बैज में क्या समझाना है। बाबा कौन, ब्रह्मा द्वारा हमको यह पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, यह विश्व की बात सही कैसे लेनी है वो हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, यह विश्व की बात सही बैज में किस तरफ है, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया हुआ, तो इशारा करना। यह पढ़ाते हैं माना, ये अभी बने नहीं है, अभी आने वाला जो टाइम है उसमें ये बनने वाले हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको यह बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं, शिव बाबा। यह मन क्या बनाते हैं, यह बनाते हैं मन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। ये विष्णु के दो रूप हैं। कौन, लक्ष्मी नारायण जो है वो विष्णु के दो रूप हैं। कौन से दो रूप है कि आठ रूप है, कटिंग में कितने लक्ष्मी नारायण होंगे, आठ लक्ष्मी नारायण होंगे। तो दो रूप क्यों बताया, दो रूप है संपन्न रूप और बाकी सब है अधूरे स्वरूप। तो अधूरी पढ़ाई बाप थोड़े पढ़ाने आया, बाप तो सोलह कला संपूर्ण बनाने के लिए आया। तो जो बनाने के लिए आया है वही संपूर्ण लक्ष्य देता है। तो बताया ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है, एक संगम की लक्ष्मी नारायण और दूसरे सत्य की लक्ष्मी नारायण। इन बातों को कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते कि विष्णु के दो रूप कौन से हैं। वो तो दो रूप समझते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। भुजाओं का आरती नहीं समझते, वो तो कह देंगे ये तो तुम्हारी कल्पना है। तुम समझाएंगे भी तो कह देंगे ये तो तुम्हारी अपनी कल्पना है। अब ये तो सब है समझने की बात है। विष्णु कोई चीज नहीं है, ये सभी साक्षात्कार मात्र है। अच्छा ब्रह्मा को तो कहेंगे अगर तुम्हारे साथ जैसे घोष होते हैं ना, वो मैले दिखाई पड़ते हैं, ये सफेद परिस्था देखते हैं, प्रेत होते हैं, उनका ईवी टोल भी होती है, और ये परिस्था ही टोल है कौन ब्रह्म, ये सभी सफेद परिस्था देखने में आते हैं। भूतों को परिस्था नहीं कहेंगे, प्रेत वो फरिश्ता नहीं है, वो ईवी टोल कहेंगे, वो फरिश्ते अलग है, हड्डी मांस दोनों है नहीं है।
आप सब जानते हैं, हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं,
नवग्रहों का प्रभाव दिखाते हैं ना, सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बनाते हैं। कैसे? वो जो सितारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनके आधार पर जन्म पत्री चैतन्य आत्माओं की कैसे बन जाती है? उन जड़ सितारों की बात है क्या? उन जड़ सितारों के प्रभाव में तो आने की बात ही नहीं, उनकी दशा करने की बात ही नहीं, बाकी ये वास्तव में किसकी है? ये चैतन्य कोई विशेष नौ सितारे हैं, नवग्रह के रूप में जिनका पूजन होता है, उनके प्रभाव में आत्माएं आ जाती है, उनकी दशा बैठ जाती है। तो उन सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बनाते हैं। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार में हो। क्या कोई जड़ सितारों की बात नहीं है, लेकिन आप जो चैतन्य सितारे हो वो हर आत्मा की जन्म पत्री के आधारभूत आप बनते हो। ज्ञान सितारों के जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य पद के आधार पर पुजारीपन के 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्री का आधार बनता है। आपकी जन्म पत्री में उन्हीं की जन्म पत्री जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जो नवरत्न हो उनके आधार पर उन धर्म पिताओं की इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि की जन्म पत्री निधि हुई है। मैंने आप आधार मूत हो, उनके भी भाग्य को बनाने वाले कौन हो? आप हीरो और हीरोइन पाठधारी के आधार पर ये सारा ड्रामा अनुभव हो। क्या बताया? ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर भविष्य के 21 जन्मों का तारक बनता है और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापना होना, आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है ये छोटी छोटी बिरादरियां जो निकलती रहती है। इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्य दर्शी बनते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकाल दर्शी बनते हो, चैतन्य सितारे त्रिकाल दर्शी हो, हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो, तो चाहे मुक्ति दो और चाहे किसी को जीवन दो, लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे ही निमित्त बनते हैं। क्या बात? इनके साथ ज्ञान सूर्य बाप के साथ जो सितारे होते हैं वो ही निमित्त बनते हैं। ज्ञान चंद्रमा के जो सात सितारे हैं वो निमित्त नहीं बनते हैं जीवन मुक्ति गेट खोलने के लिए। इसलिए आपकी जड़ यादगार सितारे भी भविष्यदर्शी बने हुए अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए। अभी जड़ यादगार हृदय के सितारे को देखते हो, अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता रहता है। सितारों में अलग अलग स्पीड दिखाते हैं, चक्र लगाने को स्पीड कोई की गति तेज दिखाते हैं और कोई की धीमी धीमी गति दिखाते हैं। कोई तीव्र गति से चक्कर लगा लेता है और कोई धीमी गति से चक्कर लगाता है। कोई सितारे संगठित रूप में होते हैं, वो कभी अलग अलग नहीं होते, और कोई सितारे एक दूसरे कुछ दूरी पर दिखाते हैं, कोई बार बार जगह बदली करते हैं, एक स्थान छोड़ा दूसरा लिया तीसरा लिया, और कोई पूछल तारे होते हैं, पूछ लगी हुई है, उनकी पूछ कभी समाप्त नहीं होती पूछ पूछ की। ये सब प्रकार के चैतन्य सितारों की स्थिति पुरुषार्थ की स्पीड अचल और हलचल का रूप संगठित रूप में सेवाधारी व सर्वस्नेही सहयोगी का स्वरूप श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप ये सब भक्ति मार्ग में जड़ सितारों के रूप में यादगार के रूप में दिखाते हैं। सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया हुआ है, कोई चंद्रमा के समीप है और कोई चंद्रमा से दूर है। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है? ज्ञान सूर्य की संतान फिर चंद्रमा का साथ का चित्र बनाया हुआ है, इसका रहस्य क्या है? इसका भी रहस्य है चंद्रमा अर्थात बड़ी मां, इसको कहा जाता है ब्रह्मा को कहा जाता है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नारी की लाइट जरूर लेते हैं। कौन? चंद्रमा भी लेता है तो वो सितारे भी लाइट लेते हैं। किससे? सूर्य से। रात में जो सितारे आसमान में चमकते हैं उनको भी रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से रोशनी मिलती है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नारी की लाइट जरूर लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने में साकार रूप में साथ आदपति ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। ज्ञान सूर्य चक्र से न्यारा रहता है, इसलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप में साथ चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। सितारे यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है? आपने तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। संगठित रूप से सर्व की इतने ही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है, अथवा संगठन के स्वभाव संस्कार स्थिति बदल लेते हैं, अर्थात स्थान बदली कर लेते हैं। सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो, बस स्वयं को स्वयं भी नारी की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो, अन्य आत्माओं को लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हो, ऐसे समझते हो। सदा स्वयं को त्रिकादर्शी स्थिति में स्थित रखते हो, ऐसे अपने को चेक करो। सुनाया था ना कि तीन प्रकार के सितारे, एक है सदा लकी सितारे और दूसरे हैं सदा सफलता के सितारे और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अपने से पूछो तीनों में से मैं कौन हूँ? अपने आप को जानते हो ना, मैं कौन हूँ ये पहली हल कर ली है। वो है मैं स्वयं ही स्वयं को जज करूँ समझा। मैंने नहीं बाप दादा बोर्ड पर या कागज पर लिख करके बतावेगी। आज मुझसे चलाने नहीं आए, मिलने के लिए आए। ये मिलन ही कल्प कल्प की रूद है। इस मिलन की यादगार जगह जगह पर अनेक रूपों में मेला मनाते सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए धन के भी प्रवृत्ति के भी दृष्टि समझ करके चलते हो। दृष्टि की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहें दृष्टि अर्थात नष्ट मोह। दृष्टि का किसी में भी मोह नहीं होता है, क्योंकि मेरा पन ही नहीं, मेरे में मोह आता है। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं, बस सेवा के अर्थ संबंध होता है, उसमें मेरा पन नहीं लेकिन बाप दादा का दिया हुआ है, तो अमानत समझ करके सेवा करेंगे, साधनों को कार्य में लगाएंगे, पहली दृष्टि बन जाती। दृष्टि अर्थात मैंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुझसे निकले। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरापन का भाना जाता है। मेरापन है तो देह भाना है, अगर तन के भी दृष्टि है तो देह का भान हो ही नहीं सकता। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जो मेरा तो बाप का, तो मदीना हो गया ना, फिर मेरापन कहां से आया? दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्ट हुआ बनने का सहज साधन क्या हुआ? मैं दृष्टि। मतलब पहले की यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? जब मेरा पन आया कि ये मेरे हैं, कौन ये सगे संबंधी, तो मेरा खत्म तो नष्ट हुआ, अर्थात इसमें भी स्वरूप हो गए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, ये मेरा सहज को मुश्किल कर देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्ट हुआ दृष्टि। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ, समझा। व्यक्त समाप्त हो समर्थ बनने की सहज युक्ति बताई। वैरायटी स्थानों से आते हुए इस समय सारा मधुबन निवासी हो ना, बल कहीं से भी आयो, इस समय अपन को गुजराती, पंजाबी, यूपी निवासी तो नहीं समझते हो? कहाँ के वासी हो? मधुबन निवासी। सदैव अपन को परमधाम निवासी व पाठ बजाने के लिए मधुबन निवासी समझो। मधुबन निवासी समझने से नशाया खुशी रहती है। मधुबन में कितनी भी तकलीफें हों फिर भी यहाँ रहना पसंद करते हो ना। घर में भले जन्नत के गद्दे हों फिर भी अच्छा कहाँ लगता है मधुबन? क्योंकि मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते हो। मधुबन की महिमा भी है, मधुबन और मधुबन की मुरली मशहूर है, इसलिए मधुबन में आना सब पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सन्मुख मुरली को मधुबन में ही सुन सकते हैं, तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। सहज योगी की स्थिति सहज हो जाएगी, मधुबन याद आने से स्थिति सदा खुश हो जाएगी। मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त और समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे। घर नहीं जाते हो लेकिन ऐसे समझो कि हम सेवा के स्थान पर जाते हैं। घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप तथा सेवा याद रहे तो खुशी और नशा रहेगा। सदा बाप को साथी बनाने वाला सदा नशे और खुशी में अटल रहेगा। सदा बाप और सेवा इसी स्मृति में रहो तो समर्थ रहेंगे, स्थिति सदा अटल रहेगी। अच्छा, किसी भी प्रकार के पेपर में कुल पास होने की युक्ति कौन सी है? जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबरा उठी, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि ये क्यों आया, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टाफ लग जाए तो क्या हो जाएगा? तो क्लास चेंज होगा, क्लास चेंज हो जाएगा, पेपर में पास हो जाएंगे, क्लास ट्रांसफर होगा तो क्या होता है? टीचर बदल जाते हैं, स्थान भी बदल जाता है। लेकिन ये क्लास ट्रांसफर कब होगा, किनका होगा, जो घबराएंगे भी नहीं, पेपर आए और उसको पास कर लें, घबराए नहीं, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करें, तो फुल स्टाफ देने वाला फुल पास होगा। क्योंकि फुल स्टाफ है बिजी कीजिए, देखते हुए न देखो और सुनते हुए न सुनो, क्या देखते हुए न देखो, बुरा न देखो बुरा न सुनो, सुनते हुए भी न सुनो, कोई सुनाता है हमारा क्या जाता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हम किसी की बात इस तरह की ऊपर नीचे की बातें क्यों सुने, बाप का सुनाया हुआ सुनो, मनुष्य आत्माओं का सुनाया हुआ न सुनो। पेपर तो आता है, कौन से पेपर की तरफ इशारा दिया, कौन से पेपर की तरफ इशारा किया, सत्तर की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो दो संगठन हो गए, तो जो छोटा संगठन वो बढ़ता है तेजी से, उसकी तरफ इशारा किया, उसको ये पैदा होगा कि जब ईश्वरीय ज्ञान है तो द्वैत क्यों पैदा हो गया, एक धर्म एक राज्य की स्थापना होने जा रही है, तो ये दो दो मतें कहां से आ गई, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन गहराई में जाना चाहिए। तो इस प्रैक्टिस से कुल पाप, कौन सी प्रैक्टिस है, कि फालतू बातों को देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, जो बाप ने सुनाया है वही सुनो, बाप ने जो दिया है वही देखो, इस प्रैक्टिस से कुल पाप हो जाते हैं। बाप ने क्या देखने के लिए दिया है, क्या देखने के लिए दिया है, आत्मा देखो, ये नहीं देखो कि ये शंकर है, ये शंकर कुमार कुमारी है, ये बुद्धि में नहीं आए, क्या है आखिर, है क्या है, आत्मा। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना, अर्थात धरती गला का अनुभव करें, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अच्छा, सगा बाप से मिलन मनाने वाले संकल्प भूल और कर्म में सफलता के सितारे, सगा बाप को साथी बनाने वाले समीप सितारे, हर संकल्प से विश्व को लाइट और माइक देने वाले तथा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद करो।
नंबर के रेस्टर में 76 पेज पर 2269 का पैसे क्लास। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बेहद नाटक का बहुत बड़ा मांडवा है, कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां, ये बत्तियां तो सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती है हम सभी अक्सर नंबरवार अपने अपने पार्ट अनुसार पूरे समय पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने के लिए। पहले कभी हम घर वापस जाए फिर यहाँ आते हैं, ये अच्छी रीति समझने और धारण करने की बातें हैं कि पहले पहले हम कैसे घर वापस जाते हैं और पहले पहले यहाँ आते हैं। मना हमें ही है ऑलराउंड पार्टधारी, नाटक के एक्टर होकर और एक दो के एक्विजिशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि अत्यंत को जानने से ही तुम ये बनते हो, तो ये पढ़ाई भी सबसे न्यारी हुई ना। बाप बीज रूप और नाली फूल है, जैसे वो कामन बीज और झाड़ होते हैं उनको जानते हैं, पहले छोटे पत्ते निकलते हैं फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पा जाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में भी है, अभी ये ज्ञान है, बाप तो एक ही बार आते हैं, समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये अनाज अविनाशी ड्रामा है, बाप है स्वर्ग कर चेतन, हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापना करने बाप को ही आना पड़ता है, तब तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। ऐसे थोड़ी है कि बाप सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आता है, सुना करके चला जाता है, फिर मनुष्य हेवन स्थापन करते रहते हैं, नहीं, हेवन स्थापन करने बाप को ही आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो ये रावण राज्य है, पराया देश है ना, तो रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में अब आ गया है, आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सभी मुसाफिर हो, सभी इकट्ठे तो नहीं आवेंगे पार्ट बजाने के लिए, तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं और कोई नहीं होते, वो भी पहले बहुत थोड़े होते हैं फिर वृद्धि को पाते, तुम आत्मा ये शरीर छोड़ वहां जाते हो, अभी बाप ने तुम बच्चों को बहुत बुद्धि दी है। तुम कहेंगे हम बीज और झाड़ के आदि मध्यंत को जानते हैं, बीज ऊपर में है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा हो जर्जरी भूत हो गया, तुम बच्चे इनके आदि मध्यंत को जान गए। आदि ऋषियों मनुष्यों और मुनियों से पहचते थे कि रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, तो वो नेति नीति कर देते, अर्थात हम नहीं जानते, उसका अंत हमको नहीं है। तो जबकि प्राचीन ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, तो फिर परंपरा से कोई चीज कैसे हो सकती है? तो ये सभी बातें अच्छी रीति धारण करनी है, भूलना नहीं है, पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग को, योग के बल से ही तुम पद पाते हो, पवित्र भी जरूर बनना है। लेकिन सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ही नहीं सकता है। ऐसे नहीं कि मनुष्य गुरु भगवान से सुन लेते हैं और फिर वो बैठ करके मनुष्य शक्ति को पवित्र बनाते हैं, नहीं, सिवाय बाप के और कोई पवित्र मनुष्य शक्ति को नहीं बना सकता, मनुष्य विनाशी धन दान करते हैं। तो राजा कुंड में अथवा कुंड में जन्म लेते हैं, तुम बच्चों को तो बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है, नई शक्ति बहुत छोटी होती है। सत्युग में देवताओं का जैसे एक छोटा सा गांव है, था शुरू में, बंबई भी पहले कितनी छोटी थी। सत्युग के गांव की बंबई से तुलना क्यों की? सत्युग है जो शुरुआत में पहले छोटा सा एक गांव होता है, उसकी तुलना बंबई माया की नगरी से क्यों कर दी? क्योंकि माया की नगरी की एक साथ तैयार नहीं होती, एकदम बड़ी नहीं हो जाती, माया का भी परछाया धीरे धीरे बढ़ता है। माया भी सत्व प्रधान सत्व रजो तमो होती है, जब तमो होती है तो विस्तार बहुत हो जाता है, और जब सत्व होती है तो छोटा रूप होता है। तो बंबई भी पहले कितनी छोटी थी, अभी तो देखो क्या बन गई है, वृद्धि को पाते रहते हैं, आप यहाँ आकर के अपना अपना पार्ट बजाती रहती है, सभी मुसाफिर है, बाप एक ही बार का मुसाफिर है, वो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, परंतु तुम इस सृष्टि पर पुनर्जन्म लेते रहते। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, तुम एक बार आते हो फिर पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते रहते। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए ऊंचे पद पाते हो, इससे अमर कथा 21 पीढ़ी कहते हैं ना, यानी बूढ़ा हो फिर दूसरा शरीर लेवे, वो आप ही है, अकाली मौत तो वहां होती नहीं है, वो है ही अमर लोक, वहां तार नहीं खा सकता, अचानक मृत्यु वहां होती नहीं है। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा नया लेते, दुख की बात नहीं रहती, सब खाल बदलता है तो उनको कुछ होता होगा क्या? कोई परेशानी होती होगी क्या? और ही खुशी होगी? अभी तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सभी कुछ करती है, आत्मा में बुद्धि है ना, शरीर तो बिल्कुल अलग है। आत्मा अगर इस शरीर में न हो तो कुछ भी चल नहीं सकता। शरीर कैसे बनता है, आत्मा इनमें कैसे प्रवेश करती है, हर चीज कैसे वंडरफुल बनती है, वंडरफुल दुनिया है ना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम्हारा स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया का बड़े से बड़ा वंडर कौन सा बताया है? स्वर्ग, रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं,